दाईं ओर मूर्तियां पड़ी थी। शेखर कुछ देर उन्हीं की ओर देखता घूमता रहा, फिर तारा की एक मूर्ति की चौड़ी पीठिका पर बैठ गया। एकाएक उसे लगा वहां एक अनभ्यस्त निर्वरता छाई हुई है, इतनी अधिक कि वह ध्यान देकर सुनने लगा कहीं कोई तनिक सी शब्द हो, पर नहीं, वहां अखंड थी। वह जल्दी से उठा और बाहर की ओर गया। द्वार बंद था, अजायब घर के भीतर वह अकेला था। वह धीरे धीरे लौट आया, आकर फिर उसी स्थान पर बैठ गया। जब हम चाहते हैं, ध्वनि चाहते हैं, तब निर्वरता हमें खटकती है। हम उसे सुनते हैं और वह हमें बोलती हुई जान पड़ती है, उस शब्द से बोलती हुई जान पड़ती है जिसके लिए प्राचीन काल में किसी मनस्तत्वविद साहित्यकार ने साई साई करना वाक्य प्रयुक्त किया था। शेखर को यह नहीं जान पड़ता है कि वहाँ की निर्वरता साई साई कर रही है, उसे काटने को आ रही है। मैं रात भर बंद रहूँगा, भोजन नहीं मिलेगा, सो नहीं सकूंगा, पीटा ढूंढते फिरते, ये सब चिंताएं उसके मन में आई ही नहीं। वह एक भव्य सुंदर आनंदमयी व्रीहल शांति युक्त आत्मविस्मृत स्वीकृति में बैठा रहा, बैठा रहा और बैठा रह गया। अब कभी वह उस क्षण का चिंतन करता है तो सहम सा जाता है, इतनी व्यापक थी वह शांति, वह निर्वरता। पर उस समय उसे कुछ भी विचित्र नहीं लगा। विचित्र लगा एक किवाड़ खुलने के शब्द द्वारा उस शांति का खंडन, एक शब्द जिसमें वह विश्वास ही ना कर सका, इतनी दूर चला गया था वह। विचित्र लगी उसके नाम की पुकार, शेखर। वह चौंक कर उठ गया और जल्दी से उस तारा की मूर्ति से पैर हट गया। उसे यह असह्य जान पड़ा कि लोग यह भी जान पाए कि वह कहाँ था, इतनी देर कहाँ रहा, क्या करता रहा। उसे लगा कि यदि लोग यह जान जाएंगे कि वह किसी विशेष स्थान पर बैठा था तो वह लज्जा से डूब मरेगा। बुद्ध ने जिस स्थान पर बैठे बैठे दिव्य ज्ञान पाया था वह उनकी दृष्टि में वैसा ही पवित्र संसार की दृष्टि से गोपनीय हो गया होगा। उससे पूछा गया कि वह कैसे वहाँ आया, वह करता रहा क्यों क्यों, कब प्रश्न से सदा पूछे जाते हैं, किंतु उसका उत्तर कुछ महत्व नहीं रखता सिवाय इसके कि जैसे वे प्रश्न अनिवार्य होते हैं वैसे ही उनके उत्तर भी सदा एक रूप होते हैं। शेखर का लज्जित मौन ही उसका उत्तर था। जब वह अपने आप से कहता कि उसमें विश्व शांति का, विश्व आत्मा का एक अंश है, तब क्या वह झूठ बोलता है, अपने आप को धोखा देता है? उसके चारों ओर दुख है, दारिद्र्य है, पीड़ा, रोग, मृत्यु, सब कुछ है। देश विदेश के धर्म के ठेकेदारों ने अपनी कुल आविष्कार शक्ति को खर्च करके नरक में जिन बुरी से बुरी और भयंकर से भयंकर यातनाओं का सृजन किया है, वे सभी संसार में उसे संसार में मौजूद हैं और वह उन्हें स्वीकार नहीं करता, उनके विरुद्ध विद्रोह करता, लड़ता है। किंतु क्या वह इसलिए नहीं कि उसकी आत्मा कैसे किसी स्थान के देख या अनुभव कर सकती है जिसमें यह सब कुछ नहीं है? उसकी आत्मा एक पारलौकिक शांति की झलक पा चुकी है। इस नरक में रहकर भी एक एकात्म है, उस नरक से नहीं बल्कि उस विश्व शांति से। धोखा, एक धोखा क्या एक समुची जीवन को, एक समुचे संघ को अनुप्राणित कर सकता है? धोखे में क्या शक्ति हो सकती है? धोखे के लिए मर सकते हैं, किंतु क्या धोखे के लिए जिया भी जा सकता है? लोग कहते हैं विद्रोही के विचार संकुचित हैं, उसका मस्तिष्क कमजोर है, उसका हृदय टेढ़ा है। लोग यह भी कहते हैं कि उसके स्वप्न छूछे आदर्शवादी असंभव है। यह सब शायद ठीक है, लेकिन वह पतितियों और असहायों का समानता की दृष्टि से देख सकता है, उसका हृदय गिरे हुए को उठा सकता है, उसका मस्तिष्क एक समूचे राष्ट्र को चला सकता है और अपने स्वप्नों के लिए सच्चाई और दृढ़ता के साथ लड़ सकता है, और उसके स्वप्न सच्चे भी हो सकते हैं। क्या वह भी धोखा है? पैराग्राफ चेंज। मैं अपने आप को एक 5 वर्ष के बालक के रूप में देखता हूँ, जो केवल एक नीला नीकर पहने हुए नंगे पैर घास पर भागा जा रहा है। बालक ने अपने कंधे पर बहुत से कमल लादे हुए हैं, कुछ खिले हुए, कुछ अधखिले, कुछ अभी बंद। जिस पथ पर वह चला जा रहा है वह चिनार के वृक्षों की छाया में होता हुआ जाता है और खिले हुए पत्तों और चिनार फूलों से प्रायः बिल्कुल ढका हुआ है। कहीं कहीं किसी अंधेरे और ठंडे कोने में रोएदार पत्तों वाली बिच्छू बूटी लग रही है, जिससे बालक डरता नहीं, क्योंकि वह इसका इलाज भी जानता है। यह दृश्य मेरी दृष्टि के सामने बिल्कुल साफ है, फिर भी मैं इसे ठीक स्थान पर नहीं रख पाता। जीवन क्रम में इसका कोना मुझे याद नहीं आता। बात अवश्य कश्मीर की है, लेकिन यह मुझे समझ नहीं आता कि क्यों स्मृति के पट पर इतने गहरे अक्षरों से लिखी है, विशेषतः जबकि इसका ना कोई कारण याद आता है ना कोई फल। शेखर के पिता की बदली एकाएक हो गई थी और वे कुछ एक दिन अपना फालतू सामान नीलाम करके दोस्तों से विदा लेकर सुकुटुम वहाँ पहुँच गए थे और जहलम के किनारे एक बंगला लेकर वहाँ रहने लगे थे। महासमर के दिनों की बात है, जब महंगी वह बहुत थी लेकिन मकान कोठियाँ सस्ती हो गई थी। शेखर लगभग 6 वर्ष का था जब उसने निश्चय किया कि अब समय आ गया है कि वह एक पुस्तक लिखे और प्रसिद्धि प्राप्त करे। वह जानता था कि उसके पिता पुस्तक लिखते हैं। एक दिन उसने पिता से पूछा कि वह पन्ने पर पन्ने क्यों लिखते जाते हैं। तब उन्होंने बताया था कि वे एक पुस्तक लिख रहे हैं। उन्होंने यह भी बताया था कि उसमें एक चित्र भी रखेंगे और यह भी एक प्रेस में कागज मशीन में डालकर घुमाए जाएंगे, जिससे एक पुस्तक की सैकड़ों हजारों पुस्तकें बन जाएंगी और प्रत्येक में वैसे ही चित्र होंगे। यह सब उसके लिए एक ऐसी अद्भुत बात थी कि उसने भी एक चित्र भरी पुस्तक लिखने का निश्चय किया था, लेकिन चित्र आए कहाँ से? पिता की सहायता वह मांगना नहीं चाहता था। उसे डर था कि वे इच्छावश विघ्न ना डाले। तभी सोचते सोचते यह विचार आया, फूल। उसने स्थान स्थान से फूल एकत्र किए हैं, उन्होंने पुस्तकों में दाब कर सुखाया, अपने माली से उनके नाम पूछे। इस प्रकार सामग्री तैयार कर लेने के बाद उसने पुस्तक आरंभ करने की ठानी। प्रारंभ कठिनाई हुई कागज की। एक दिन जब पिता दफ्तर गए हुए थे तब उसने उसकी चाबी चुरा कर मेज का दराज खोला और उसमें पिता की चिट्ठी लिखने के सबसे अच्छे कागज निकाले। कार्ड से मोटे, चिकने, चमकदार और कोने में लाल सरकारी चिन्ह शेरगड़ी से विभूषित। शेखर ने देखा कि चित्रों के लिए सभी पुस्तकों में मोटा और चिकना कागज लगता है। 20-1 कागज लेकर शेखर ने अपने बहन से उन्हें सिलवा लिया। बहन प्रत्येक आयोजन में उसकी सचिव और संगनी थी। यद्यपि कॉपी सीने की मजदूरी में उसने 5 कागज स्वयं ले लिए। अब शेखर को अपनी पुस्तक की जिल्द की चिंता हुई और इसका जो हल उसने निकाला वह इतना साहसिक था कि उसने अपने धड़कते हुए हृदय को संभालकर पुस्तक की अलमारी में से सुनहरी चमड़े की जिल्द वाली बाइबल निकाली। एक ही झटके में जिल्द को पुस्तक से अलग किया, पुस्तक को रसोई के पीछे कूड़े के ढेर में छिपाया और जिल्द के अंदर अपने कॉपी रख ली। यह सब क्षण भर में हो गया। शाम को जब सब लोग लौटे तब उसे एकांत में पाते ही उसकी बहन ने पहला प्रश्न किया, आज क्या किया? और शेखर की दोषी आत्मा ने उसे सब कह डाला। छिपाने का साहस उसने नहीं पाया। तब अपना रहस्य सुरक्षित रखने के लिए शेखर को दूसरे दिन की अपने हिस्से की मिठाई का भी त्याग करना पड़ा और इस सौदे में उसने बहन से कॉपी भी जिल्द के अंदर सिलाकर फिट कर ली। दूसरे दिन भाई और बहन पुस्तक लिखने बैठे। शेखर ने गोंद से प्रत्येक पन्ने पर अलग अलग फूल चिपका दिए। बहन अपनी वनस्पति विज्ञान की पुस्तक लाई और शेखर उसे देखकर उसी ढंगों से फूल का वर्णन करने लगा। पहले फूलों के रंग रूप का वर्णन, फिर उनके उपयोग, फिर लेकिन यह हैबिटेट क्या चीज है? बहन ने कहा, हमें नहीं मालूम, स्कूल में यह नहीं पढ़ाते, छोड़ जाते हैं। शेखर ने जाकर पिता से पूछा, हैबिटेट किसे कहते हैं? हैबिटेट का मतलब जहाँ कोई चीज रहे या पाई जाए। क्यों? कुछ नहीं, बहन ने पूछने को भेजा है, कहकर सर पकाया हुआ शेखर भाग गया। पीछे से पिता का स्वर आया, वह खुद क्यों नहीं पूछने आती? शेखर लगभग एक महीने के परिश्रम के बाद पुस्तक तैयार कर सका। जब उसके बहन ने उसे देखकर पास कर दिया, तब शेखर ने निश्चय किया कि वह भी अपने पुस्तक को प्रेस में घुमाकर सैकड़ों बनवाएगा। इसलिए एक दिन जब उसके पिता विशेष प्रश्न जान पड़ते थे, तब उसने जाकर अपनी पुस्तक उनके हाथ में रख दी। लेकिन तत्क्षण ही शर्मा कर वह भाग गया। केवल इतना भर देख पाया कि पिता की तैयारियां बदल गई। फिर उन्होंने पुस्तक खोली। कुछ ही मिनट में शर्म और डर पर कौतूहल ने विजय पाई। पिता और माता की ठठाकर गूंजती हुई हंसी सुनकर वह लौट आया और देखने लगा। उसे देखते ही पिता की हंसी दोगुनी हो उठी। उन्होंने कमर में पकड़कर उसे उठा लिया और बोले, इतना मैं बरसों से नहीं हंसा होऊंगा, गजब की किताब है तुम्हारी। शेखर कुछ घबरा सा गया, क्योंकि उसे ठीक समझ नहीं आया कि यह प्रशंसा है या कुछ और। अपने जाने के एकदम प्रशंसा का पात्र था, क्योंकि पुस्तक बड़े सुंदर अक्षरों में लिखी गई है और चित्र कितने सुंदर हैं, और इनके नाम लाल रंग से लिखे गए हैं, फूसिया और आयरिस का भला इससे बढ़कर क्या वर्णन होगा? इंग्लिश के दो पंक्ति, फ्यूसिया वायलेट फ्लावर विथ फोर रेड स्मॉल लीव्स, वेरी प्रीटी काश्मीरी गर्ल्स पुट इन देयर हेयर नर्स, जीनिया पुट्स इट इन हेयर एयर्स टू डांस इन देअर किचन, हैबिटेट शालीमर गार्डन्स एंड द क्रसमन साहसी। अर्थात फूसिया छोटी लाल पत्तियों वाला बैंगनी रंग का फूल बहुत सुंदर काश्मीर लड़कियों के बालों में लगाती है, जिनिया आया कानों में पहनकर रसोई घर में नाचती है, पैदाइश शालीमार बाग और चश्मा शाही। आगे, आयसिस बड़े सुंदर कुछ नीले होते हैं, कुछ लाल और कुछ सफेद। फूल के अंदर एक पीली डंडी होती है। पैदाइश गुपकार के पास मिस्टर चटर्जी के घर में, सबसे अच्छे हमारे घर में होते थे, पर बाढ़ में वह बह गए। कोस्ट कंप्लीट। लेकिन जाने क्यों, वह किसी को भी हंसने लायक से अधिक पसंद नहीं आई। शेखर जी बैठ गया और पिता की अनुग्रह भरे वाक्य, कुछ परवाह नहीं बेटा, अब की बार अच्छी लिख लोगे, लेकिन मेरी पुस्तक खराब मत करना, से वह अधिक खिन्न हो ही हुआ। लेकिन जाने क्यों, वह किसी को भी हंसने लायक से अधिक पसंद नहीं आई। शेखर का जी बैठ गया और पिता के अनुग्रह भरे वाक्य, कुछ परवाह नहीं बेटा, अब की बार अच्छी लिख लोगे, लेकिन मेरी पुस्तकें खराब मत करना, से वह अधिक खिन्न ही हुआ। यों उसके पहले साहित्यिक प्रयास का अंत हुआ, या यों कहें कि अंत का आरंभ, क्योंकि असली अंत तो 2 वर्ष के बाद तब हुआ जब उसे कूड़ेदान खाने में दीमक और अन्य प्रकार के कीड़े खा गए। साहित्य का निर्माण मानो जीवित मृत्यु का आह्वान है। साहित्यकार को निर्माण करके और लाभ भी तो क्या, रचयिता होने का सुख भी नहीं मिलता, क्योंकि काम पूरा होते ही वह देखता है, अरे या तो वह नहीं है जो मैं बनाना चाहता था। वह मानो क्रियाशीलता का नारद है, उसे कहीं रुकना नहीं है, उसे सर्वत्र भड़कना है, उभरना है, जलाना है और कभी शांत नहीं होना है, कहीं रुकना नहीं है। शायद इसलिए उसके पथ के आरंभ में ही विधि उसे रोककर कहती है, देख इस पथ पर मत जा, यहाँ तेरे पैरों के लिए नहीं है। और यदि वह ढीठ होकर बढ़ा ही जाता है तो वह कहती है, अच्छा तो तू समझ, अपना जिम्मा संभाल। और निर्मन अपने खाते में से अपने पोष्य और रक्षण्य बीजों अर्थात बच्चों की सूची में से उसका नाम काट देती है। शेखर ने कोई 6 मास बाद दूसरा प्रयास किया। अब बार वह पद में था। वसंत के दिन थे, शेखर जम्मू में था। काश्मीर की सड़क भी बंद थी, धूप काफी पड़ने लगी थी, फिर भी शेखर नंगे सिर और नंगे पैर बाहर फिर रहा था। कुछ ही देर बाद जब उसके पैर तब जाते थे तब उसे कमरे में भाग आता था जहाँ कुछ ही देर में उसकी पढ़ाई शुरू होने वाली थी। जो कुछ मिनट उसके बाकी थे उन्हें वह किसी प्रकार की शारीरिक उद्योग में बिताना चाहता था। तभी उसके भाई ने आकर सूचना दी कि मास्टर साहब आ गए हैं। मास्टर साहब जॉन गैस नामक एक अमेरिकन थे। वह शेखर उन्हें सदा मिस्टर गैस कहते थे। आज यह देखकर कि मास्टर साहब के आने से उसके मनोरंजन में विघ्न पड़ा है, उसे मास्टर साहब पर क्रोध आया। कमरे की ओर जाते जाते उसको एक शरारत सूझी। दूसरे शब्दों में उसे कविता का दिव्य प्रेरणा प्राप्त हुई। जब से शेखर की पुस्तक का निरादर हुआ था तब से उसके मन में वह अपमान और वह उपहास खल रहा था और उसका निश्चय था कि कभी अवसर पाकर वह किसी विराट काव्य चेष्टा से अपनी खोई हुई इज्जत दोबारा पाएगा। आज एकाएक उसे विचार हुआ कि वह अवसर आ गया है। उसने जाना कि वह कवि है। मास्टर के सामने पहुंचकर शेखर ने सीखे हुए तोते की तरह नम्रता से कहा, गुड मॉर्निंग मिस्टर गैस। गुड मॉर्निंग कहकर मास्टर साहब बैठ गए। शेखर जिसकी धूप से चौंधियाई हुई आँख के भीतर अंधेरा मालूम हो रहा था धीरे धीरे टटोल कर स्टूल पर बैठा और बैठते ही बोला, मिस्टर गैस मैंने आपके लिए एक कविता लिखी है। मिस्टर गैस ने मुस्कुराकर कहा, अच्छा सुने तो। शेखर ने तत्काल कुछ गाती सी आवाज में कहा, माई टीचर्स नेम इज मिस्टर गैस, इफ जी इज गॉन देन ही इज एन एस। मेरा गुरु का नाम मिस्टर गैस है, यदि जी हटा दिया जाए तो वह एस गधा हो जाएंगे। लगभग आध घंटे बाद घर से मील भर दूर एक मॉलिसरी के बाग में बैठा हुआ शेखर अपने अराक्त गाल मल रहा था। वह संसार की न्यायहीनता को रो रहा था। पिता से पीटता हुआ यहाँ तक भागता आया था और जब वे पीट कर लौट गए थे तब यहीं बैठकर सोचने लगा था। विवश क्रोध के बीच जब उसे याद आता था कि वह कहाँ है तब वह एक आधा फूल तोड़कर सूंघने लगता था और फिर विचार में डूब जाता था। भाई और बहन भाई बहन होकर भी बहुत देर तक अपरिचित रह सकते हैं, बल्कि जीवन भर अजनबी रह सकते हैं। शेखर ने भी अपनी बहन को बहन की तरह लगभग 6 वर्ष की आयु में जाना था और वह भी तब जब उसका एक और शिशु सखी ने उसे सिखाया था कि बही नापा होता क्या है। वह सखी थी शशि। शेखर ने शशि को पहले पहल तब देखा था जब उसकी आयु कोई 4 वर्ष की थी और शशि की 3 से कुछ अधिक। शशि की माँ विधावती शेखर की माँ की बहन लगती थी और इस नाते में अपनी लड़की के साथ उनसे मिलाए आई थी और उसके पास ठहरी थी। जिस समय वह पहले पहल आई उस समय शेखर सोया हुआ था। सवेरे उठकर उसने देखा उसकी खाट से कुछ ही दूर पर एक दूसरी खाट पर एक लड़की बैठी हुई है और जिज्ञासा भरी आंखों से उसकी ओर देख रही है। तभी उसकी माँ ने आकर कहा, शेखर यह तुम्हारी बहन है। शेखर ने नहीं माना, यद्यपि वह कुछ बोला नहीं। भला यह भी कोई बात है कि कोई कह दे कि यह तुम्हारी बहन है और वह बहन बन जाए। यह सरस्वती है, वह शेखर की बहन है। जब से वह जानता है तब से उस घर में रहती है, उसके साथ खेलती है, पिता से डांट खाती है और गुस्से में आकर उसे पीटती है। और या शेखर ने मन में अपने को शशि से मार खाते हुए कल्पना करने की चेष्टा की और फौरन मन ही मन बोला और उसने जान लिया कि कोई लाख कहे शशि शशि है, उसकी बहन नहीं। थोड़ी देर बाद शेखर की माँ ने कहा, आओ तुम दोनों नहाओ, और उन्हें स्नान घर में ले जाकर बिठा दिया। शेखर के नहाने का ढंग यह है कि स्नान घर में पानी बहने के लिए जो नाली है उसे कपड़े से बंद कर देता। जब दहलीज तक पानी भर जाता तब उसमें उछल कूद करता। आज भी उसने इसी प्रकार पानी भरना आरंभ किया। शशि एक कोने में खड़ी उसे देखने लगी। शेखर ने उसे ध्यान भी नहीं दिया। पानी भर गया, शेखर नहाने लगा, शशि फिर से वहीं खड़ी रही। तभी शेखर की माँ फिर आई और शशि को एक छोटा सा पीतल का लोटा देते हुए बोली, ले तू उससे नहा, और चली गई। शशि जब अपने छोटे छोटे हाथों में लोटा थाम कर नल से भरने लगी तब शेखर उसके पास आकर रुष्ट स्वर में बोला, यह लोटा मेरा है। शशि अपनी बड़ी बड़ी आंखें खोलकर उसकी ओर देखने लगी, ना बोली ना हिली, पानी भरती रही। शेखर ने और आगे बढ़कर कहा, मेरा है दे दो। शशि ने कुछ पीछे हटते हुए कहा, नहीं मैं नहाऊंगी। दो कहकर शेखर उस पर झपटा, लोटा छीन लिया और बात की बात में शशि के माथे पर दे मारा। शशि चिल्लाई माँ और रोने लगी। शशि की माँ ने आकर देखा और सब समझ गई। शेखर से बोली, तुमने मारा है। शेखर ने शशि के माथे से खून बहता देखकर झट लोटा भूमि पर रख दिया, सहमा खड़ा रहा। शेखर की माँ भी हाथ में एक सोटा लिए दौड़ी आई और शशि से बोली, इसने मारा है ना? पता नहीं शेखर का मुंह देखकर या सोटा देखकर या किसी और कारण से शशि ने लोटे की ओर इशारा करते हुए कहा, लोटा लग गया है। कैसे, शेखर ने मारा? आप ही लग गया, कहकर वह फिर रोने लगी। शेखर की माँ उसे डंडा दिखाकर घूरती हुई चली गई। विद्यावती ने एक बार शशि की ओर देखा, फिर धीरे धीरे शशि का माथा धोने लगी। शेखर और नहाया नहीं, चुपचाप कपड़े पहने फिर झन भर खड़ा रहा, फिर शशि की ओर देखते हुए छटपटाकर लोटा उठाकर बाहर चला गया। उसके बाद वह शशि से बोला नहीं, पर जब वे खाना खाने बैठे तब उसने चुपचाप अपने लोटे में पानी भरा और उसे शशि की थाली के पास रख दिया, फिर स्वयं खाने लगा। जब शशि ने बिना उसकी ओर देखे ही लोटा उठाकर उससे पानी पी लिया तब शेखर को लगा उसने संसार के सब लोटों से बढ़कर एक चीज पा ली है। उसी शाम को शशि चल गई और शेखर ने फिर 10 वर्ष तक उसे नहीं देखा। शेखर की बहन का नाम था सरस्वती। वह शेखर से 5 वर्ष बड़ी थी। उसके बाद शेखर से बड़े 2 भाई थे, ईश्वरदत्त और प्रभुदत्त। शेखर का जन्म नाम तो बुद्धदेव ही रखा गया था, पर विद्यावती ने उसे देखते ही जाने क्या सोचकर उसकी माँ से कहा था, बहन इसका नाम चंद्रशेखर रखो। औरों के विरोध करने पर भी उसे बराबर शेखर ही कहती थी और उसके इस आग्रह से धीरे धीरे सभी ऐसा करने लगे गए थे। तो सरस्वती और शेखर साथ खेलते थे, लेकिन उनके खेल में उनके साथ की अपेक्षा सरस्वती के हाथ और शेखर के गालों का साथ अधिक रहता था। और जब से शेखर के पिता ने सरस्वती को आज्ञा दी थी कि वह शेखर को पढ़ाया करे, तब तो शेखर ने समझ लिया कि बहन उस जंतु का नाम है जो खेल में झगड़ा करे, अपनी गलती होने पर भी पीठ डाले, तंग करे, सीधे अक्षर पढ़ाकर संयुक्ताक्षर, यद्यपि शेखर तब उन्हें संयुक्ताक्षर नहीं कहता था, पढ़ाए, ना पढ़ने पर पिता से कहे और कभी किसी बात में विरोध होने पर माँ से या फतवा प्राप्त कर ले कि वह बड़ी है, इसलिए शेखर को उसका कहना मानना चाहिए। जब वे काश्मीर गए तब शेखर को इस बात में बड़ा मज़ा आता था कि कभी वर्षों के दिनों में वह रात में चुपचाप खिड़की खोल दे ताकि खिड़की के पास सोई हुई सरस्वती भीग जाए। कोष्ठ में शेखर ने आग्रह किया था कि खिड़की के पास सोएगा क्योंकि वहां से चांद दिखता था, पर माँ की आज्ञा हुई कि वह नहीं सो सकता, उसे ठंड लग जाएगी क्योंकि वह छोटा है। कोष्ठ कंप्लीट। लेकिन वहीं कश्मीर में उन्हीं वर्षा के दिनों में एक दिन सरस्वती उसके मन में एकाएक सरस्वती से बहिन और बहिन से सरस हो गई। यद्यपि इस अंतिम अंतरंग के नाम का उसके कभी उच्चारण नहीं किया, इसे मन में ही छिपा रखा। 8 दिन से लगातार वर्षा हो रही है। जेहलम नदी का मधुर कल कल शब्द बढ़ता हुआ अब एक अनवरत गंभीर घोष हो गया था। शेखर के पिता ने घर से सब कीमती सामान उठाकर बंगले की ऊपर मंजिल में मंगा लिया। सब लोग वहीं रहते थे और पिता प्रायः खिड़की के पास बैठे चिंतित आंखों से बाहर देखते रहते थे। मुंह में सिगार पड़ा था। कभी कभी जब उसका ध्यान आ जाता तब एक आध सूटा लगाकर वह फिर से किसी चिंतन में लीन हो जाते थे। बंगला नदी के किनारे एक बाग के बीचों बीच में था जो कि चारों ओर 10 फुट ऊंची मिट्टी के भीतर से घिरा हुआ था। भीतर प्रवेश करने के लिए चारों भीतों के बीचों बीच दीवार के दोनों ओर सीढ़ियां बनी हुई थी। दीवार नीचे से 12-13 फीट चौड़ी थी, ऊपर बिल्कुल पतली। बाहर नदी का पानी बढ़ता हुआ भूमि से समतल हो गया था और अब सब और फैलने लगा था। धीरे धीरे दीवार के भीतर की भूमि से ऊंचा बढ़ता जा रहा था। भीतर बंगले में फूलों का लांघते हुए मानो स्वच्छंदता से उन्मुक्त उत्कृत पानी का घोष साफ सुन पड़ रहा था। बंगले के भीतर एक घिंची हुई प्रतीक्षा थी। शेखर स्थिर दृष्टि से पिता की ओर देखता हुआ सोच रहा था कि वे क्यों इतने स्थिर, पलकहीन, चिंतित दृष्टि से नदी वाली दीवार की ओर देख रहे हैं और समझ नहीं रहा है। ना उसे यह समझ आ रहा था कि माँ क्यों आंसू भरी आंखों से कभी उसकी ओर, कभी उसके भाइयों की ओर और कभी सरस्वती की ओर देख रही है। लेकिन कुछ ना समझते हुए भी वह विद्युतमय वातावरण मानो उसे भी लील गया था। वह भी किसी अखत आकारहीन चिंता से सबकी ओर देख रहा था। एकाएक उसने देखा उसकी बहन के मुख पर किसी भीतरी क्रिया की छाया स्पष्ट भासित होती थी। वह धीरे धीरे सरक कर उसके पास पहुंचा और दबे स्वर में बोला, क्या है? सरस्वती ने उसे उंगली के साथ आने का इशारा किया और दबे पांव सीढ़ियों की ओर बढ़ी। दोनों चुपचाप नीचे उतर गए। किसी ने उन्हें देखा नहीं। नीचे पहुंचते ही शेखर ने पूछा, क्या है? सरस्वती ने तीखे स्वर में कहा, चूहे की बिल। चूहों की बिल ही क्या? मैं नहीं समझा। मूर्ख हो ना, वह पानी बाहर बढ़ रहा है, अभी बिलों में से भीतर आने लगेगा, तब उन्हें बंद करना है। शेखर समझ गया। अब दोनों सबसे निकट की दीवार पर पहुंचे और कीच से बिलों के मुंह बंद करने लगा। कभी कभी वे साथ ही अपने प्रिय आयरिस के पौधे भी खींच लेते और उन्हें भी बिलों में ठूंस कर कीचड़ से दबा देते। एक बार शेखर ने सिर उठाकर सरस्वती की ओर देखा। वह उस समय एक आयरिस का पौधा लिए अनिश्चित सी खड़ी थी। क्षण ही भर में पौधे में से एकमात्र बड़ा सा सुंदर फूल तोड़कर अपनी चोटी में खोस लिया और फिर पौधे को बिल में दबा दिया। शेखर को यह बात अजीब सी लगी कि वह विचित्र लड़ाकी चीज भी वह बात सोच सकती थी जो वह स्वयं सोच रहा था। पर क्षण भर में यह बात फूल कर फिर काम में जुट गया। उसके और सरस्वती की भी मन में यह स्पष्ट था कि वे तभी तक अपना काम कर सकेंगे जब तक भीतर अपनी उनकी अनुपस्थिति का पता नहीं लगेगा। वे यह भी अनुभव कर रहे थे कि कुछ ही देर में कुछ होने वाला है, पता नहीं क्या, और पिता कभी उन्हें बाहर नहीं रहने देंगे, और इसलिए वह अत्यंत शीघ्रता से काम कर रहे थे, किसी आसन्न विपत्ति से डर नहीं, भीतर बुला लिए जाने के डर से। उनकी कमर दुखने लगी थी, पर काम अभी उतना ही पड़ा था। वे एक बिल बंद नहीं कर पाए होते थे कि दूसरी फूट पड़ती थी और निरंतर बढ़ती जाती थी। पानी का फव्वारा सा भीतर छूट पड़ता था। इन फव्वारों की ऊंचाई शेखर ने अनुमान किया कि बाहर भीतर की भूमि से 4 फुट ऊंचा चढ़ गया है। अभी यह प्रश्न उसके मन में नहीं आया था कि जब वह दीवार के समतल हो जाएगा तब क्या होगा। तभी पानी की गर्जन के ऊपर उन्होंने पिता की पुकार सुनी, जिसमें एक नया उसका अपरिचित स्वर था। वे रुककर एक दूसरे की ओर देखने लगे। सहसा यह निश्चय नहीं कर पाए कि भीतर जाएं या अपना काम जारी रखें। अपने खतरे को समझे बिना भी वे अनुभव कर रहे थे कि जो काम कर रहे हैं वह अभिमान का विषय है। उसके निश्चय करने से पहले ही एक झड़पू हुआ मानो पानी में कुछ गिरा हो। उन्हें दिखा कुछ एक उखड़े हुए आयरिस और दीवार में फटी हुई एक दरार में से भीतर गहराता हुआ मैला प्यासा पानी। निश्चय हो गया वो दोनों साथ साथ भीतर भागे। अभी वे द्वार तक पहुंचे भी नहीं थे कि पानी का गर्जन असह्य हो गया और उन्होंने पाया कि वे घुटने घुटने पानी में दौड़ रहे हैं। आखिर द्वार वहां पिता खड़े थे, जिनके मुख की ओर एक बार देखकर वे भीतर चले गए। उनके मुख में परवाह था जो दो बार नहीं दिखता, ना किसी को दिखे। क्षण भर बाद सब लोग ऊपर की मंजिल में इकट्ठे हो गए थे। कुछ मिनट में निचली मंजिल में पानी भर गया। पानी अपने साधारण तल से 25 फीट चढ़ गया था। उस समय तो इतना ही, लेकिन उसके बाद बार बार शेखर को उस क्षण का ध्यान आने लगा जब पिता की पुकार सुनकर उसकी और सरस्वती की आंखें मिली थी, जब दीवार टूट गई थी, जब किसी मुख समझौते में दोनों साथ साथ घर की ओर दौड़े थे, क्योंकि वास्तव में एक ही क्षण था, काल की गति का अविभाज्य टुकड़ा, अनुभूति का एकांक ही झोंका, हृदय का एक ही स्पंदन, और उसे लगने लगा कि सरस्वती ने उसे कुछ कहा था, कुछ बताया था, कुछ सिखाया था क्या? इतना तो उसे याद है, फिर भी कब वह सरस्वती नहीं रही, बहिन हो गई, कब उसे शेखर ने सरस नाम देकर उसे प्यार से अपने मन में दोहराया, या उसे याद नहीं। शांत निश्चल झील पर एक शिकारा धीरे धीरे चला जा रहा है। झील इतनी शांत है कि जान पड़ता है कि शिकारा भी वहाँ खड़ा ही है। उसकी गति का कोई प्रमाण नहीं दिख पड़ता है। शेखर और उसके भाई स्वप्नों के द्वीप की सैर करने जा रहे हैं। वहाँ पहुँचकर शेखर के भाइयों ने स्नान करने का प्रस्ताव किया, जो उसी क्षण पास हो गया, क्योंकि शेखर को तो वोट का अधिकार ही नहीं था। तीनों भाइयों ने कपड़े उतारे और पानी में घुस गए। ईश्वर और प्रभुदत्त तैरने लगा। शेखर तैरना नहीं जानता था। मुग्ध नेत्रों से दोनों भाइयों की ओर देखने लगा। कितनी भली थी पानी को चीरती हुई उनकी भुजाओं की गति, कैसा असह्य आकर्षक था उनका पंख युक्त कांपते हुए बाण की तरह अग्रसरन। शेखर की मुग्धता उस दर्जे तक पहुंच गई जब उसकी क्रियाएं पर से उसका नियंत्रण हट गया, जब वह हृदय में इतना तन्मय हो गया कि उसका अनुकरण एक अनैच्छिक क्रिया हो गई, वह भी आगे कूद पड़ा। उसके हाथ भी उसी तरह चलने लगे जैसे वह भाइयों के हाथ चलते देख रहा था, पर क्षण ही भर में वह डूबा। बड़ी चेष्टा से उझक कर बाहर आया, किंतु सांस लेने से पहले फिर बैठ गया। उसके हाथ अभी तक उस मुग्ध अनुकरण में चलते ही जा रहे थे। उसने देखा प्रगाढ़ नीलिमा का एक सुंदर स्वप्न। फिर उसे लगा वह बड़ा प्यासा है, फिर दम घुटने लगा, फिर शून्य। जब उसे होश आया तब वह औंधा लेटा हुआ था और भाई उसकी पीठ दबा रहे थे। आसपास वे मांझी खड़े हुए थे जिन्होंने उसे घींचकर बाहर निकाला था। जब वे घर पहुंचे तब उसके एक सांस लेते लेते भाइयों ने सारी कहानी अपने ढंग से कह डाली। पिता ने उसे डांट कर कहा, क्या बेवकूफ़ी सूझी थी, तैरना नहीं जानते तो अकड़ क्यों दिखाई थी। भाइयों का कहना माना होता, भाइयों ने कहानी कही थी इसलिए भाइयों का कहना भी। भाइयों ने कहा था पर शेखर ने यह बात नहीं कही, चुपचाप पिता की ओर देखता रहा। पिता ने फिर कहा, देखता क्यों हो, शर्म तो नहीं आती, अगर डूब जाते तो। शेखर को नहीं लगा कि डूबने से बच जाने पर शर्म आनी चाहिए, ना यही कि डूबना कोई बड़ी भयंकर बात होती। मृत्यु का डर वास्तव में बड़ों की चीज है, लेकिन उसके कुछ दिन बाद जब तीनों भाई पड़ोस के कुछ लड़कों के साथ खेल रहे थे तब शेखर ने देखा कि उसके बचने की बात सुनकर सभी बड़े प्रभावित हुए हैं। इससे उसको कुछ अभिमान सा हुआ। वह उन सब से छोटा होने के कारण कुछ दबता था, अब अवसर पाकर उन पर रोब डालने का लोभ नहीं छोड़ सका। बोला, अरे अभी हुआ क्या है, अभी तो मैं फिर किसी दिन यहाँ करूँगा, डूब कर देखूँगा मरना क्या होता है, मैं जरूर किसी दिन ऐसे ही मरूँगा। लड़के एकाएक सहम कर उसकी ओर देखने लगे, फिर चुपचाप चले गए। सोचने लगे, क्या सचमुच मृत्यु डरने की चीज है। इसी विचार में कोई अज्ञात छाया थी जिससे दबकर शेखर ने एक दिन माँ से पूछा, माँ तुम कब मरोगी। माँ एक बोतल हाथ में लिए सीढ़ियाँ उतर रही थी जब यह प्रश्न हुआ। उसके हाथ से बोतल छूटकर गिर पड़ी। उसने अचकचाए हुए स्वर में कहा, क्या। बोतल गिरने की आवाज़ सुनकर पिता भी आए। बात सुनकर क्षण भर वह भी सहमे रहे, फिर तड़ातड़ तीन चार थप्पड़ उन्हें शेखर के जमा दिए, फिर माँ को साथ लेकर ऊपर कमरे में चले गए। थोड़ी देर बाद शेखर ने खिड़की में से झांक कर देखा, वे दोनों चुपचाप अत्यंत गंभीर बैठे हुए थे और कहीं देख नहीं रहे थे, एक दूसरे की ओर भी नहीं, यद्यपि आंखें स्थिर थीं। और उसने अधिक गंभीर अधिक संदिग्ध स्वर में पूछा, क्या मृत्यु इतनी भयानक है। एक दिन शेखर पिता के साथ बाजार गया तो उसने देखा पंसारी जिन कागजों में सौदा लपेट देता है वह सचित्र है और चित्र कई रंगों में छपे हुए हैं, कोई नीला कोई हरा कोई ब्राउन। चित्र भी थे सिपाहियों के, जहाज़ों के, हवाई जहाज़ों के, तोपों के, धुएं के, यूं कह लीजिए कि उथल पुथल के। और उन दिनों उथल पुथल के कामों में उस विशेष रुचि थी। उसने पिता को पल्ला पकड़कर कहा, हमें ये ले दीजिए। क्या, ये कागज। पिता ने हंसकर कहा, अच्छा। फिर दुकानदार से बोले, भाई ये पुराने अखबार, कुछ इसे दे देना। शेखर ने जोड़ा, अच्छी अच्छी फटी सटी हम नहीं लेंगे। और सब उसने देखा कि दुकानदार उसकी बात पर विशेष ध्यान नहीं दे रहा है, तब उसने स्वयं बढ़कर 8-10 चुन ली। घर आकर अपने भाई बहनों को जुड़ा कर वह भूमि पर एकाएक अखबार फैलाकर देखने लगा और उनके चित्रों के नीचे लिखे हुए वर्णन पढ़ने लगा। मैं हमारी जीत, शत्रु की आशंका के आदमी मारे गए, हम आगे बढ़ रहे हैं, हमारे हवाई जहाज पर गोले बरसा रहे हैं। शेखर ने पूछा, हम कौन हैं। ईश्वर दत्त बोला, अंग्रेज जो जर्मनों से लड़ रहे हैं। तब शेखर ने एक चित्र देखा जिसमें सिख सिपाही बंदूकों पर संगीन चढ़ाए बढ़ रहे थे। उसके पास भी लिखा था, हमने में से संगीनों का चार्ज किया, शत्रु के आदमी मारे, हमारे पक्ष में भी कुछ मरे और कुछ घायल हुए हैं। शेखर ने कहा, ये तो अंग्रेज नहीं है। भाई ने बताया, सिख सिपाही भी अंग्रेजों की ओर से लड़ रहे हैं। अंग्रेज भारत में राज्य करते हैं, इसलिए भारतीय सिपाही उनकी तरफ से लड़ने भेजे जाते हैं। और पिता कह रहे थे कि कई लाख भारतीय मारे गए हैं। शेखर ने सरस्वती से पूछा, मरते कैसे हैं? मर जाते हैं और क्या? मर कर क्या होता है? पागल, जान नहीं रहती, चल फिर बोल नहीं सकते, तब ले जाकर जला देते हैं। डूबने से ऐसे ही मर जाते हैं? हाँ। क्यों मारते हैं? सांस बंद हो जाती है तब जान निकल जाती है। शेखर थोड़ी देर इस बात को सोचता रहा, फिर एकाएक उसने पूछा, जान क्या होती है? होती है बस। उसने फिर आग्रह किया, क्या होती है? मुझे नहीं मालूम, पिताजी से पूछो। थोड़ी देर बाद शेखर ने फिर पूछा, जान आती कहाँ से है? ईश्वर से। जाती कहाँ से है? ईश्वर के पास, ईश्वर ले लेता है। हाँ, शेखर ने संदेह के स्वर में कहा, हूँ। थोड़ी देर बाद उसने फिर पूछा, इतनी सब जाने ईश्वर के पास गई होगी? हाँ। जर्मनी को भी? हाँ। सब कुछ ईश्वर करता है? हाँ। तब लड़ाई भी ईश्वर ने कराई होगी? हाँ। तब कहकर शेखर रुक गया। उसे याद आया, उसने अखबार में ही पढ़ा था कि जर्मन लोग बड़े क्रूर होते हैं, कैदियों को पीटते हैं, भूखा मारते हैं, औरतों को कोड़े लगाते हैं, सड़कों पर घसीटते हैं इत्यादि। क्या यह सब भी ईश्वर के करने से ही होता है? भाइयों के साथ शेखर टांगे में बैठा हुआ सैर करने जा रहा था, तभी उसने देखा सामने से एक टूटियल से छकड़े में एक अधमला घोड़ा लगा आ रहा है। छकड़ा लदा हुआ है, घोड़ा उसे खींच नहीं सकता, पर गाड़ीवान उसे चाबुक लगाता जाता है और गाली देता जाता है। शेखर ने मन ही मन सोचा, हमारा टांगा कैसा शानदार है। गाड़ीवान ने चाबुक रखकर डंडा निकाला, तड़ातड़ घोड़े के पीट दिया। घोड़े ने एक बार फिर किसी तरह सिर उठाकर झटका, फिर पूर्ववत झुक गया। मार पड़ती रही, उसका बदन कांपता रहा, लेकिन वह आगे नहीं बढ़ा। वह एक बार उसने और जोर किया और शेखर के देखते देखते उसके घुटने लड़खड़ाए, वह गिरा गिरा और फिर नहीं उठा। टांगे वाले ने बताया कि ऐसा कई बार होता है, घोड़ा को दाना नहीं मिलता, भूखे रह रहकर वे कमज़ोर हो जाते हैं, तब उन्हें भंग और गुड़ खिलाकर काम निकाल लिया जाता है। उसने टांगे में जूते हुए घोड़े को बताकर अभिमान से कहा, इसे भी मैंने ऐसे ही कई बार 40 मील दौड़ाया था टांगे समेत। ईश्वरदत्त ने पूछा, घोड़े इससे मरते नहीं? इससे कैसे मर सकते हैं, इससे तो जोर आता है। वह घोड़ा तो भूखा था इसलिए मर गया, टांगा चलता रहा। लौटती बार उसी स्थान के पास आते हुए शेखर ने पूछा, जो आदमी भूखे मरते हैं वे भी ऐसे ही मरते हैं? किसी ने उत्तर नहीं दिया। शेखर को एक बड़ी खतरनाक आदत पड़ गई, वह अकेला बैठ बैठ कर सोचने लगा। और उसने देखा, जो बात उसने अपने जाने दी जाने देखी भी नहीं थी, वह भी उसे याद आने लगी। उसे याद आया, एक दिन पिता असमय दफ्तर से लौट आए थे। आते ही उन्होंने देखा, शेखर की माँ बरामदे में बैठी धूप सेक रही थी। उन्होंने फीके स्वर में कहा, शुरू हो गई है, और भीतर चले गए। माँ भी उठकर चली गई और शेखर नहीं सोच सका कि किससे मांगे उसे खा डालने वाले प्रश्न का उत्तर, क्या शुरू हो गई है। उसे याद आया, एक दिन माँ के नाम एक चिट्ठी आई। माँ ने उसे पढ़ा, पढ़कर चुप बैठी रह गई, आंखों में आंसू भर आए। पिता ने चिंतित स्वर में पूछा, क्या है? तो चिट्ठी उन्हें पकड़ा दी। पिता भी पढ़कर पहले चुप ही रहे, फिर जैसे कुछ सोचते हुए बीच बीच में जोर जोर से पढ़ने लगे, रामचंद्र भर्ती हो गया है, और लाम पर जा रहा है। शेखर कुछ समझा नहीं। इसके वर्ष भर बाद जब उसे मालूम हुआ कि भर्ती क्या चीज़ होती है, तब विचारों को किसी अज्ञात कड़ी ने उसे रामचंद्र मामा की याद दिला दी और उसने माँ से पूछा, माँ मामा कब आएंगे? माँ ने एक बार पीड़ित आंखों से उसकी ओर देखा, कुछ उत्तर नहीं दिया। मामा उन दिनों फ्रांस में किसी अस्पताल में पड़े थे, अंधे, एक बाँह से वंचित और बेहोश। एक दिन शेखर ने बाहर खेल से आकर देखा, माँ धीरे धीरे रो रही थी। वह उल्टे पांव लौट गया। घंटे भर बाद जब फिर वहाँ आया, तब भी माँ रो रही थी और रोते रोते काम करती जा रही थी। कभी आंसुओं से आंखें भर आती थी तो एक हाथ से झटक देती थी। शेखर ने कुछ डरते डरते दूर ही खड़े कहा, माँ। माँ ने उसकी ओर देखा, आंसू पोंछ डाले, फिर मुंह फेर कर कहा, बेटा तेरे मामा अब नहीं आवेंगे। शेखर नहीं पूछ सका कि क्यों। जब एक दिन पिता ने आकर सूचना दी कि लड़ाई समाप्त हो गई है, हम जीत गए हैं, संधि हो गई है, अब सब ठीक है, तब सबसे पहला प्रश्न जो शेखर के होंठों पर आया था, जिसे वह पूछ नहीं सका, वह था, तो क्या मामा वापस आवेंगे? शेखर ने सुना कि पंजाब में दंगा फसाद हुआ है, गोली चली है, बहुत लोग मारे गए हैं, फौजें आ रही है, कई स्टेशन जला दिए गए हैं, लाइनें टूट गई है। इन सब बातों को सुलझाकर जोड़कर वह पिता के पास गया और बोला, पंजाब में भी लड़ाई होगी। पिता ने कहा, ऐसी बात नहीं कहते, अभी पहले से तो छुट्टी मिल ले, पहला तो कभी भी खत्म हो गई, पर उसका असर तो बाकी है, अभी चीज़ें इतनी महंगी हैं। और शेखर ने उद्दित स्वर में कहा, इससे क्या, अगर ईश्वर की मर्जी हुई तो और होगी ही। पिता ने घूर कर उसकी ओर देखा और कहा, भाग जाओ। पिता ने देखा कि शेखर बहुत पूछने लगा है और घर की पढ़ाई से उसकी यह आदत हटती नहीं, भला सरस्वती की पढ़ाई का क्या रोब। उन्होंने शेखर को बुलाकर कहा, शेखर तुम्हें स्कूल जाना होगा, कल चपरासी से लेकर जाकर दाखिला करा आएगा। शेखर में कैसी पढ़ाई हुई वह बात की बात है। पहले तो यह हुआ कि शेखर को बताया गया कि कुछ दिनों में भारत के वायसराय यहाँ आने वाले हैं, उनके स्वागत के लिए लड़कों को कवायद सीखनी होगी। शेखर ने वर्दी बनवाई, ड्रिल की और सोच लिया कि वह आजीवन स्कूल में रहेगा। सरस्वती से पढ़ते तो युग हो गए, कभी वायसराय नहीं आया, ना वर्दी पहनने को मिली। वायसराय अगनबोट में बैठकर चले आ रहे थे। अगनबोट के आगे शेखर के स्कूल के दो सिकारे चल रहे थे, जिन्हें स्कूल के ही लड़के खेल रहे थे। उनकी लाल पट्टीदार सफ़ेद वर्दियाँ बड़ी सुंदर लग रही थी। शेखर स्वयं किनारे पर था। जिस घाट पर वायसराय को उतरना था, उसके रक्षकों में से एक वह भी था। बोट अभी दूर था, बहुत कोशिश करने पर वायसराय महोदय नहीं दिख सकते थे, इसलिए शेखर नदी के दोनों ओर जुटी हुई काश्मीरियों की भीड़ को देख रहा था। नदी के दोनों किनारों पेरहन और कुल्ला पहने काश्मीरियों से खचाखच भरे थे। कहीं कहीं सफ़ेद सफ़ेद पेरहन के ऊपर सफ़ेद पगड़ी भी दिख जाती थी और कहीं स्थानों पर झुंड के झुंड स्त्रियों की लाल पगड़ी नुमा टोपी के भी दिखते थे। एकाएक नदी के दोनों ओर मानो बादल गरज उठे और गर्जन ताल पर चलने लगा। भौचक शेखर ने देखा, दोनों ओर जुटी हुई तमाम प्रजा, पुरुष और स्त्री, सिवा उन सफ़ेद पगड़ी वाले पंडितों के, ताल से छाती पीटने लगी और मानो हाँफ हाँफ कर कुछ कहने लगी, जो वह कुछ यत्न से समझ नहीं सका। भत गुदगुदाया, भत गुदाया। अग्निबोट निकट आ गया। शेखर ने चेष्टा की वायसराय को पहचानने, लेकिन उस भयंकर घोष से मानो सारा वातावरण ऐसा छा लिया था कि उसका दबाव इतना हो गया था कि वायसराय उसे दिखा ही नहीं पाए। दिखा कुछ तो उसकी असंख्य मुख और भुजाओं से आकार युक्त हाहाकार। घर आकर शेखर ने पिता से पूछा, वे लोग चिल्ला क्यों रहे थे? पिता ने बताया, युद्ध के कारण महंगी बहुत हो गई है और वे लोग भूखे मर रहे हैं। वायसराय सम्राट का प्रतिनिधि है, सब कुछ कर सकता है, इसलिए ये लोग उसी के पास फरियाद करने आए थे भात के लिए। वायसराय ने क्या कहा? वायसराय हर एक की बात थोड़े ही सुनते हैं। अब लड़ाई तो खत्म हो गई, फिर चीज़ें क्यों महंगी है? जर्मनों ने महंगी कर दी है। नहीं, वायसराय सस्ती क्यों नहीं कर देते? वायसराय कैसे कर सकता है? शेखर को यह अच्छा नहीं लगा कि उसके प्रश्नों का उत्तर प्रश्न से दिया जाए, पर बिचारी का वश नहीं था। उसने फिर से पूछा, ईश्वर कर सकता है? हाँ, ईश्वर सब कुछ कर सकता है, महंगी भी उसी ने रोकी है। हाँ, अब भाग जाओ, अपनी पढ़ाई नहीं करनी। शेखर के मुख पर जो प्रश्न था वह भी उसके साथ ही भागा। क्यों? युद्ध गया तो उसकी सखी आई, सब और लोग चारपाइयों पर पढ़ने लगे और वह दिन भी आया कि माता पिता और भाइयों के पास ही एक चारपाई पर शेखर भी पड़ गया। केवल सरस्वती बची रही। सरस्वती को आज्ञा हुई कि जहाँ तक हो सके वह सबसे अलग रहे। वह सबको दवा पिलाकर कभी शेखर की चाय पर बैठती तो फौरन आवाज़ आती, जाओ यहाँ मत बैठो, नहीं तो तुम बीमार हो जाओगी। शेखर इस आज्ञा पर मन ही मन कुड़ता कूड़ा करता और सोचा करता, क्या हुआ, हो जाएगी बीमार तो यहीं पास पड़ी हो रहेगी। या कभी उसे या क्रोध पर क्रोध आया करता जिसने उसे चारपाई पर लिटा दिया। कभी जब माँ कहती, बेटा घबराओ नहीं, ईश्वर सब अच्छा करेंगे, तब वह चाहता फट पड़े, बरस पड़े, पूछे कि क्या युद्ध अच्छा हुआ है, भूख अच्छी हुई है, मामा नहीं आए वह अच्छा हुआ है, वह जो घोड़ा मर गया अच्छा हुआ है, इतने लोग बीमार पड़े अच्छा हुआ, मरे अच्छा हुआ। सब कुछ ईश्वर करता है जिसमें उसे आपत्ति नहीं, वह सब कुछ अच्छा करता है। या झूठ उस पर अत्याचार है, इसे वह किसी तरह नहीं सह सकता। सब लोग अच्छे हो गए, पिता दफ्तर भी जाने लगे, केवल शेखर पड़ा रह गया। उसे इसका विशेष दुख नहीं हुआ क्योंकि उसे अलग कमरा दे दिया गया और सरस्वती जब तक बेधड़क आने लगी। एक दिन शेखर के सिरहाने बैठे हुए सरस्वती ने कहा, आज मेरा सिर बहुत दुख रहा है। शेखर बोला, अब तुम बीमार पड़ोगी। नहीं, अभी नहीं, पहले तुम अच्छे हो जाओ, फिर मैं बीमार पड़ भी गई तो कोई बात नहीं। मैं नहीं अच्छा होता, जाने क्या सोचकर शेखर ने कहा, शायद सहानुभूति पाने के लिए। मैं तो अब मर जाऊंगा। धत पागल, ऐसी बात नहीं कहा करते। शेखर ने देखा, सरस्वती बात तो वह कर रही है जो वह स्वयं कहा करते हैं, लेकिन उसमें वह भाव, वह आशंका, वह सहमा हुआ डर नहीं है। उसे अच्छा सा लगा कि वह सरस्वती से कुछ पूछ सकता है जो और किसी से नहीं पूछ सकता। बोला, तुम मरने से डरती नहीं? नहीं, मरना बहुत डरावना होता है। नहीं, सब लोग क्यों डरते हैं? इसलिए नहीं डरते कि मरना बहुत खराब होता है, इसलिए डरते हैं कि जीना अच्छा लगता है। या इतनी सीधी, इतनी सच बात उससे किसी ने क्यों नहीं कही थी? थोड़ी देर बाद शेखर ने सरस्वती की ओर हाथ बढ़ाते हुए कहा, मैं नहीं मरूंगा। सरस्वती ने उसके हाथ पकड़कर उसकी छाती पर रख रखा, फिर धीरे से कान के पास एक चपत लगाकर चली गई। शाम को इसी कमरे में दूसरी चारपाई पर सरस्वती भी लेट गई।